तो वो उसकी उंगली से गिर गई थी। इस वक्त से वो मेरे पास है और मैं उसे अपने तकिए के नीचे रखती हूँ। औरंगजेब ने खत को सरबा मेहर किया और मेहर रोशन आरा बेगम को वापस कर दी। इस सिलसिले में उसने अपने शकों को पोशीदा रखा ताकि उनके वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं और फिर इस मामले की तफ्तीश कर सके कि वो अनगश्तरी किस तरह निकाली गई। औरंगजेब ने महज अहकाम जारी करने से इकतफा न की बल्कि अवामुलनास को ये जिताने के लिए कि वो जिंदा है उसने ये इंतज़ाम किया कि उसे दरबार खास में बड़े बड़े अमरा के सामने ले जाया जाए जहां वो अपनी शक्ल दिखा सके। लेकिन वापसी में उसे चोट आ गई जिसके बायस एक रात तक तकलीफ जारी रही। अब परेशानी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई इसलिए कि हर एक ने ये समझ लिया कि अब वो जरूर मर जाएगा। कुछ दिन आराम करने के बाद और कुछ अफाका महसूस करने के बाद औरंगजेब ने जाफर खान मोहम्मद अमीन खान राजा जय सिंह को तलब किया ताकि उनके दिलों से उन जासूसों को दूर कर सके जो उनकी मौत की अफवाह से पैदा हो रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से और नहायत आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहा था मगर उसमें खासा वक्त लगा। सेहतियाबी के बावजूद उसकी कुव्वत गोई में खामी रह गई और आज तक उसे बोलने में काविश करनी पड़ती है। मुकम्मल सेहतियाबी के बाद उसके ख्वाजा सराओं से रोशन आरा बेगम के इन अकदाबान की तफसील तलब की जो वो उसकी अलामत के दौरान करती रही। वो उसकी इस हरकत पर बहुत खफा था कि उन्होंने नायबैन सल्तनत सूबेदारों और सरदारों को खतूत लिखे कि वो सल्तनत आजम की तरफदारी करें और इन खतूत पर शाही मेहर सबत की। मजीद बरां वो इस वाक़े से बहुत मुतासर हुआ कि उन्होंने सुल्तान मुअज्जम की वालदा से इंतहाई बद अखलाकी का मुजाहरा किया और ये कि मलका ने उनकी बदतमीजी को नहायत सब्र से बर्दाश्त किया। इन असबाब की बना पर उसके दिल में मलका की तौकीर बढ़ गई। उसने इनका मनसब बढ़ा दिया और उन्हें नवाब भाई जी का खिताब अता किया जिसका मतलब है खावतीन में सबसे अफजल। वो सुल्तान मुअज्जम से ज्यादा प्यार करने लगा। उसे उसने शाह आलम का खिताब दिया जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। रोशन आरा बेगम के लिए उसके दिल में वो मोहब्बत बाकी न रही जो पहले थी। वो उनकी बदामालियों पर बहुत नाराज था। जब कभी और मुगल बादशाह बीमार पड़ते तो नायबेन सल्तनत और सूबेदार फितना फसाद पर आमादा हो जाते मगर औरंगजेब की अलामत के दौरान इस किस्म की कोई बगावत न हुई। गोया अफवाह में गर्म हुई के बादशाह मर चुका है मगर अमरा ने इन पर कोई तवज्जा न दी क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि कहीं खुद औरंगजेब ही ना किसी हिकमत अमली के तहत इन अफवाहों की तरीक ना की हो ताकि वो ये मालूम कर सकें कि इनके हालात क्या हैं। इन्हें ये पहले से मालूम था कि औरंगजेब जबरदस्त शातर है और अब उसे अपनी इस शोहरत से फायदा पहुंचा। अब औरंगजेब जुबान के अलावा वो बाकी हर लिहाज से सेहतमंद हो चुका था। ये इस बात का सबूत है कि इस पर यह बीमारी खुदा की तरफ से बतौरे नाजिल हुई थी ताकि वो अपनी राया पर रहम करे। जब लोग सेहतयाबी की मुबारकबाद देने आते तो वो उनसे कहता कि अल्लाह ताला ने मुझे अलील करके फिर सेहतयाब किया है ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि गो उसने मुझे अपने मनसब पर पहुंचाया है मगर वो अपनी मर्जी से जब चाहे मुझे फना कर सकता है और तंदुरुस्ती अता कर सकता है। इस अलालत के बायस मुझे ये इल्म हुआ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अजीज रखता है। औरंगजेब को इस बात का यकीन था इसकी ये अलालत इस बात की तंबीह थी कि वो मुसलमानों से अपनी सल्तनत के आगाज में और वसूल ना करे जो उसके इजदाद करते आए हैं। यही वजह है कि उसने सच्चे ईमान वालों की नागरी माफ कर दी और इस तरह तमाम बंदों के लिए खुदा के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आने का दरवाजा खोल दिया। इसी इरादे से उसने तमाम इलाकों सूबों और शहरों में ये अहकाम भिजवाए कि मुसलमान को हर किस्म की مالگزاری کی معافی دی جاتی ہے اور بادشاہ کو اس محصول کے علاوہ جو وہ تمباکو پر ہے کس قسم کی کوئی رقم دینا ان پر فرض نہیں ہے، مگر بعد ازاں اس نے اسے بھی معاف کر دیا، جس کا سبب ایک واقعہ تھا جس کا ہے آگے ذکر کروں گا۔ اپنی علامات کا دوسرا سبب اس نے پکڈوروں سے محصول کی وصولی یابی بتایا۔ یہ پگوڈے اور گرجا ہوتے ہیں جن میں ہندو کسی بات کے سامنے پوجا کرتے ہیں۔ ہر پگوڈے سے گراں قدر رقم شاہی خزانوں کو ملا کرتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس قسم کا محصول لگانا لازم ہے، اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بت پرستی کو جائز سمجھتا ہے، لہٰذا اس نے یہ احکامات دیے کہ ایسا محصول آئندہ نہ کبھی وصول نہ کیا جائے۔ ہر ہند کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ 5% ادا کرے۔ بعد ازاں اسے اپنی اس کسادہ دلی پر افسوس ہوا اور چند برسوں کے بعد اس نے اپنے احکامات کو مسترد بھی کرنا چاہا، لیکن اپنے نام و نبوت کے لیے اور اپنی منافقت کے باعث اس نے یہ تبدیلی غور نہ کی۔ پس اس نے رقم جمع کرنے کا ایک اور طریقہ نکالا۔ اس نے اپنے سرداروں اور عہدیداروں کی تنخواہ میں مسلسل کمی کرنی چاہی اور یہ حکم دیا کہ روپیہ کو جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور 14 فرانسی سے زیادہ قیمت کا نہیں ہوتا، اٹھائیں 2800 کے برابر گردان دانا جائے۔ اس سلسلے میں اورنگزیب نے جو عملی قدم اٹھایا وہ بادشاہوں کے لیے اس عمرہ کا درس ہے کہ وہ کس طرح اپنے احکامات منوائیں۔ روپیہ قالین دین کرنے والوں کے نے بادشاہ کے ان احکامات کو ماننے میں تعطل کیا اور حکم عدلی کے جواز میں مختلف توجیہات پیش کی۔ وہ انہا سا بادشاہ نے انہیں کئی بار بلوا کر یہ سمجھایا کہ حکومت بعض مسلحوں کی بنا پر تبدیلی لا رہی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہمیشہ نافرمانی پر مادہ رہتے تھے شاہی احکامات کو نظر انداز کیا تاکہ ان کی بادشاہ سے غیظ میں آ کر دلی کے تمام مہاجنوں کو بلوایا۔ محل کے رج میں تخت نشین ہو کر اس نے انہیں بلوایا کہ وہ اپنی صد کو ختم کر کے روپے کی قیمت پہلی قیمت کے مقابلے میں دونی کر دیں۔ مہاجن اپنی بات پر اڑے رہے اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایسا کرنے سے انہیں بے انتہا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اورنگزیب نے نہایت خاموشی کے ساتھ بلا کسی جسمانی حرکت کے یہ حکم دیا کہ ان میں سے سب سے زیادہ معمر شخص کو برج سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ اس حکومت کی بجاوری کے بعد باقی ماندہ نے خوف زدہ ہو کر سنائی احکامات ماننے کا اقرار کیا اور پھر اس سلسلے میں کوئی شکایت کبھی نہیں آئی۔ باب چہارم۔ تقریباً اسی زمانے میں جب اورنگزیب صحت یاب ہوا، دلدلی سفیر سوم ایڈرانس بادشاہ کو تخت نشینی پر مبارک دینے کے لیے دلی میں وارد ہوا۔ یہ سخت بڑی فہم و فرست کا مالک تھا اور چونکہ کافی مدت تک سورت کے ولنزی کارخانے کا سربراہ رہ چکا تھا، اس لیے مغلوں کے رسم و رواج کے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ لوگ جو وافر طائف اور گراں قدم رقم لاتے ہیں سب سے زیادہ قابل قبول، خاطر مدارت کے اہل اور فوری توجہ کے لائق سمجھے جاتے ہیں، لہذا وہ بادشاہ کے لیے طائف لایا۔ تحفے میں وافری مقدار میں بہت عمدہ سرخ پارچہ جات، عمدہ سبز کپڑوں کے تھان، چند بڑے آئینے، بہت سی چینی کے برتن، چین اور جاپان کے نو اور پالکی کی طرح کا ایک چھوٹا سا تخت تھا جو جاپانی کاریگری کا عمدہ نمودہ تھا اور جس پر بہت دلکش تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وزیروں کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں میں کثیر رقم، مختلف اقسام کے کپڑے اور دیگر نادرات تھے۔ جیسے ہی وہ وارد ہوا اس نے وزیروں سے اپنی آرزو کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بس چند دنوں میں اسے بادشاہ کے حضور میں پیش ہونے کی اس شرط پر اجازت ملی کہ وہ پہلے فرنگی پھر ہندوستانی رسم کے مطابق کورنش بجا لائے گا۔ پس दरबार में बादशाह के हजूर उसने हस्बे वादा अमल किया और औरंगजेब को यूरोपी तर्ज का लबास और तरीक और नश बहुत दिलचस्प मालूम हुआ। मुर्तजा खान ने इन लोगों से मुलाकात की और सफीर के हाथ से खत लेकर वजीर को पेश किया। मीर तशरी गफात अपने हाथ में सोने की छड़ी ले आ गए। उसने सफीर का हाथ पकड़ा और उसे माँ पांच हमराइयों के बाइज्जत जगह पर बिठाया। ये इसलिए खास रायत थी इसलिए कि बिलअमूम सफीर के साथ महज एक शख्स बादशाह के हजूर में पेश हो सकता है। सफीर को कम ख्वाब के सरपा से नवाज गया। बाद अजां औरंगजेब ने तायफ पेश करने का हुक्म दिया। तख्त को इसने सबसे ज्यादा पसंद किया चूंकि तख्त मजीन था इसलिए उसने हुक्म दिया कि उस पर शीशे लगा दिए जाएं ताकि गिरने इसकी तस्वीर खराब ना हो। वो आज तक इस तख्त का इस्तेमाल करता है। फिर उसने सफीर को ये कहलवाया कि अब वो जा सकता है और उसे जल्दी ही रुख्सत मिल जाएगी। ताहम सफीर मुगलों की तबे मगरूर को समझता था जो उस बात को बायस फख्र समझते थे कि मुकर्रर हमा वक्त उनके गिर्द पेश रहें। वो चाहते हैं कि बैरूनी ममालक के सफरा दरबार में हमेशा हाजिरी देते रहें। इसी सबब उसने वज़रा को ज्यादा तवाहिब भेजे और बिला आकर 4 माह के बाद रुख्सत लेने में कामयाब हो गया। रुख्सत के वक्त सफेर को एक और सरपा बख्शा गया। अलावा अजी बता दिया कि गवर्नर के उसे एक बेशकीम सरपा, एक जड़वा खंजर और एक नहायत मुस्तफाना खत दिया गया। हालांकि औरंगजेब की अलामत में शदीद महज चंद दिनों तक ही रही मगर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने में काफी मुद्दत सरफtहुई। तबीबों ने तब्दीली आबो हवा के लिए कश्मीर जाने का मशवरा दिया। औरंगजेब तब्दीली आबो हवा के लिए तो बिल्कुल तैयार था मगर यहाँ का वजूद इसके दिल में कांटे की तरह खतलता था। और ये बात उसके इस आराम और तफरी मुशाफिल में महल होती थी जो उसके मिजाज और तबीयत के लिए ज़रूरत थी। बस अब उसने बाप से शराफत का इजहार करना बंद कर दिया और उसके बरखिलाफ बूढ़े के साथ शिद्दत से पेश आने का फैसला कर लिया। सच ये है कि इस फैसले के पीछे ना तो बीमारी के दौरान में फरिश्तों को तहरीक थी और ना खुदा का फरमान था बल्कि खुद उसकी बद नजरी का फरमा थी। ताकि उनकी बाप की जिंदगी जल्द ख़त्म हो जाए उसने यह कमाल सादर किए कि उसकी कैद को ज़्यादा सख्त कर दिया जाए। उसने हुक्म दिया कि वो खिड़की जिस पर बैठकर शाहजहां दरिया का नज़ारा करके अपना जी बहलाता था ईंटों से बंद कर दी जाए। अलावा अजी आगरे के महल के नीचे बंद कीचों का एक दस्ता इन अहकामात के साथ मुकर्रर किया जाए कि वो बूढ़े को परेशान करने के लिए बंदूक चलाते रहें और अगर वो खिड़की पर नजर आए तो लोग तो गोली मार दें। शाहजहां की परेशानियों को ज़्यादा शदीद खाने के लिए इसके जमा करदा सोने चांदी के सिक्कों में से एक कसीर तादाद को इंतहाई शोर और गुल के साथ उठाने का हुक्म दिया गया ताकि वो सोने और मायूसी का शिकार हो। लेकिन शाहजहां ने भी तजाहिल अरफाना से काम लिया और ये जाहिर किया कि वो कुछ देख नहीं रहा है। शोर और गुल और बंदूकों की आवाज़ का जवाब रक्सारों की महफलों में से देते हुए वो अपनी बीवियों और औरतों के साथ ऐसो इशत देता रहा। एतबार खां जैसे महल के तमाम वाक़ात का इलम था। तमाम इतलात दरबार को रवाना करता रहा ताकि उनके बिल आखिर औरंगजेब शाहजहां की जान लेने का फैसला कर लिया। बस उसने शाहजहां के तबीब मुकर खां को जिसने औरंगजेब की हमायत से उसी वक्त इनकार कर दिया था जब वो बाप को कैद करने आगरे आया था जहर और एक खत रवाना किया। खत में ये तहरीर था कि अगर तबीब ये चाहता है कि वो चंद से अमन सुकून से जिंदा रह सके तो वो ख्वाजा सरा फहीम से जिसे उसी मकसद के लिए भेजा गया है जहर हासिल करके शाहजहां को पिला दे। हुक्म अदली की सूरत में उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। मकर खान ने वो जहर ले लिया और ये जवाब दिया कि वो बादशाह सलामत की ख्वाहिश से बेहतर काम सर अंजाम देगा। ख्वाजा सराफीम ये जवाब देकर वापस लौटा। मुकरम खान ने यह सोचा कि जिस बादशाह ने उसे एक अदना हसीयत से एक मरतबा तक पहुंचाया कि आज वो इतना दौलतमंद और हर किसो नकस के नगामे मोहतरम है, उसे जहर से हलाक करना मुनासिब नहीं है। मजीद बरा, क्या शाहजहाँ ने पूरे अतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द नहीं की है? अलामा जी, उस पर ये पूरी तरह वाजिया था कि अगर वो शाहजहाँ को जहर दे दे तो भी औरंगज़ेब उसकी जान नहीं बख्शेगा। तजर्बे ने उस पर यह बात साबित कर दी। बस उसने ये तय कर लिया कि वो बाइज्जत तौर पर अपनी जान दे देगा। वही जहर खाकर उसने परगुशी तारीख हो गई और गफलत के दौरान ही आध घंटे के अंदर अंदर वो मर गया। और औरंगज़ेब बाप की वफात की पुरअमीद खबर का इंतज़ार कर रहा था। बिल आखिर उसे ये मालूम हुआ कि जिस शख्स ने शाहजहाँ के महज चंद दुआएं हासिल की थी वो उसके ज़्यादा काम आया बानिस्बत उसके जिसे उसने ज़िंदगी दी थी। बहरहाल इस वाक़े ने औरंगज़ेब के दिल पर कोई तासर कायम ना हुआ किया और वो कश्मीर जाते से पहले बाप की जान लेने के लिए काबिल हो गया। लेकिन मौसम गर्मा करीब था और इसलिए ये ज़रूरी था कि हिंदुस्तान की जरज़मीन पर सूरज की शुआओं की तेज़ी से पहले कश्मीर के लिए रवानगी इख्तियार की जाए। इस बारे में वो तबीबों के मशवरे और बिलखसूस रोशन अरा बेगम की राय पर अमल पैर रहा था, जो हरम सरा की बंदिशों से आज़ाद होकर अपने जिनसी हालात को रूब करार लाना चाहती थी। वजीर ब्राह्म बेगम साहब को जो सना शकूफ अहद हिजानी में नसीब था वो उसने ज़्यादा तजक्को एहतशाम के साथ लश्कर में शामिल होना चाहती थी। कश्मीर जाने का फ़ैसला करने के बाद औरंगज़ेब ने अपने वफादार दोस्तों का इंतखाब किया जिनमें उसे कामिल एतबार था। उसने होशियार खां को आगरे के सूबेदार के मनसब पर तयन किया, मुर्तजा खां को लश्कर की सारी सिपा सलारी बख्शी और ख्वाजा सरा एतबार खां को नए अहकामात भेजे कि वो शाहजहाँ की ज़बरदस्त निगरानी करे। औरंगज़ेब 6 दिसंबर को 3 बजे सपहर शहर दिल्ली से रवाना हुआ। बखूबियों का मुतफका फ़ैसला भी यही था कि बादशाह के तवील सफ़र के लिए जिसकी मुद्दत आने जाने और क्याम का अरसा मिलाकर कम अज़ कम 1 वर्ष थी, यही दिन सबसे ज़्यादा मुनासिब था। ये अफवाह गर्म थी कि औरंगज़ेब का सफ़र कश्मीर के लिए नहीं बल्कि कंधार के किला की तस्खीर के लिए था जो उन दिनों शाह फारस के कब्ज़े में था। लेकिन ये बात गलत थी। शहर को छोड़कर बादशाह ने रात भर शालीमार के तवीलो अरीज बाग में आराम किया जिसे शाहजहाँ ने तफरी के लिए बनवाया था। ये बाग शाही महल से 3 कोस के फातले पर लाहौर जाने वाली सड़क के किनारे वाक़ है। यहाँ औरंगज़ेब ने 6 दिन का आयाम किया ताकि हर शख्स तैयारियां मुकम्मल कर सके। लश्कर में हर एक के शामिल होने के बाद उसका इरादा सफ़र शुरू करने का था। मुग़लों के मुल्क में ये रवायत था कि जब लश्कर मैदान में हो तो उस अमर की वजाहत के लिए नकारा बजाते हैं कि आइंदा सुबह रवानगी नहीं होगी। 6 शाम को कोई नकारा नहीं बजा और पेश खैमे रवाना कर दिए गए। इस सिलसिले में ये बात जाननी चाहिए कि मुग़ल सल्तनत में बादशाह और बहुत से उमरा खैमे ले साथ चलते हैं कि अगर एक इस्तेमाल हो तो दूसरे अगले दिन के इस्तेमाल आगे रवाना कर दिया जाता था। शाही खैमा जात की बर्बादी के लिए 200 ऊंट और 50 हाथी थे जो महज इस काम के लिए वक़्फ़ थे। 7वें दिन सुबह के 3 बजे लश्कर रवाना हुआ। सबसे पहले भारी तोपें थीं जो कि हमेशा आगे होती हैं और इस रास्ते का तयन करती हैं जिससे गुजरकर दूसरे पड़ाव तक पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी गाड़ियों पर एक खूबसूरत कश्ती थी ताकि हसबे ज़रूरत उस पर बादशाह को दरिया पार कराया जा सके। इसके पीछे दिगर साजो सामान था। इस तरह जब सहर नमोदार हुई तो सवारों और पैदल फौज के अलावा जो अपनी मुकर्रर जगहों पर थी पड़ाव बिल्कुल खाली था। बाकी मांदा के साथ दिगर सवारियों के अलावा 200 ऊंट थे जिन पर चांदी के रुपए लदे हुए थे और हर ऊंट पर 480 पौंड वजन की चांदी थी। 100 ऊंटों पर सोने के सिक्के थे जिनमें से हर एक पर इतने ही वजन का सोना था। 150 ऊंट पर वो जाल लदे हुए थे जिन्हें शेर के शिकार में इस्तेमाल किया जाता था। शाही दफ्तर हसाबात भी साथ था इसलिए कि असल हसाबात हमेशा दरबार शाही के साथ होते हैं। 80 ऊंट 30 हाथियों और 20 गाड़ियों पर सल्तनत के हसाबात खाते और दिगर कागजात लदे हुए थे। अलावा ये 50 ऊँटों पर पानी था, जिसमें से हर ऊँट पर धात के 2 बर्तनों में भरा हुआ पानी ही शाही इस्तेमाल के लिए था। शाही खानदान के शहजादे भी अपने अपने रुतबे के इसी अंदाज में शाही सफर थे। छोटे खेमों से लदे हुए 8 खच्चर बादशाह के साथ थे। ये खेमे सफर में उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब बादशाह को आराम की ख्वाहिश हो या वो कुछ तना दिल करना चाहे या फिर कोई और खास जरूरत हो। उनके साथ ही 2 खच्चरों पर बादशाह के कपड़े थे और 2 मुख्तलिफ अनोखे खुशबूदार फूलों के अतर थे। शाही दरबार के रवाज के मुताबिक अगर बादशाह को अगले दिन सफर शुरू करना हो तो शाही बावर्ची खाना 10 बजे रात को ही रवाना हो जाता है। ये बावर्ची खाना 50 ऊँटों पर लदी हुई इस्तेमाल और दूध देने वाली 50 मोटी ताजी गायों पर मुश्तमिल होता है। लजीज खाने भी बावर्चियों के हमराह बेचे जाते हैं। इन बावर्चियों में से हर एक महज का एक खाना पकाता है। हर शोबे का नुगरान आला मरतब का एक शख्स होता है जिसका काम ये होता है कि वो मुगली की सरबराह महर थैलियों में खाना रवाना करे। 2 मुलाजमों के सरसरों पर चीनी के बर्तनों की टोकरियां और दिगर सामान होते ये 50 ऊँटों पर 100 संदूकों में खलते होती हैं। 30 हाथियों पे फौजी सरदारों में तकसीम करने के लिए खसूसी हथियार और जोहरात होते हैं। ये हथियार इन इकसाम के होते हैं, तलवारें, मागलाफ डालें, मुख्तलिफ इकसाम के खंजर जिन पर म्यानाकारी और सोने का काम होता है और मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर जड़े होते हैं। इसके अलावा वो कलनियाँ और वो अशियाँ जो ख्वातीन को तोहफे में दी जाती हैं, मतलब जोहरात जो वो सीने पर पहनती हैं या मुख्तलिफ इकसाम के सोने के बाजूबंद जिन पर मोती और हीरे जुड़े होते हैं। सामान के साथ बसलों, कुल्हाड़ियाँ, गदलों और फादड़ों से लैस 1000 मजदूर चलते हैं ताकि दुश्वार गुजार राहों को हमवार किया जा सके। उनके सरदार घोड़ों पर सवार होते हैं और उनके हाथों में उनके मुनसिब निशान मसलन चांदी के कदाल या बसोले होते हैं। अगले शाही पड़ाव पर ये लोग खेमों और भारी तोपों को निसब करते हैं। जब हल्की तोपें आ जाती हैं तो ये शाही खेमों के गिर्द रखी जाती हैं और औरंगजेब के सुबह 6 बजे उस तख्त पर बैठकर जो सफ़ेर ने तोहफे में दिया था रवाना हुआ। इस तख्त को ले जाने के बाद वो आदमी थे मुख्तलिफ वजह की 3 पालकियां साथ थीं जिन पर वो हस्बे ख्वाहिश बैठ सकता था। अलावा अजीब 5 हाथियों पर मुख्तलिफ इकसाम की 35 थीं जिन्हें वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही वो अपने खेमे से बाहर निकला हल्की तोपें जो उसके चारों तरफ थीं आगे बढ़ने लगीं। ये तोपें तादाद में 100 थी और हर एक को वो 2 गड़े खींचते थे। बादशाह के जलूस की तरतीब ये थी जिसे मगड़ी वो खेमा से बाहर निकला और तख्त पर बैठा तो सारे जंगी साज बजाने लगे और हर अव्वल दस्ता 8000 सवारों पर मुश्तमिल था। मीनमा पर 8000 सवार हसन अली खां की सरकर्दगी में और मेसर पर 8000 सवार मोहम्मद अमीन खान के मताद थे। इन दोनों बाजुओं के पीछे शिकारी थे जो घोड़ों पर सवार थे और जिन्होंने अपने अपने कार पर बिठा रखे थे। बादशाह के बिल्कुल सामने 9 हाथियों पर बढ़ के लिए झंडे थे। इन फोहा हाथियों के पीछे 4 और हाथी थे जिन पर सब्ज फेर रहे थे। इन फेरों पर सूरज का निशान था। इन हाथियों के अकब में 9 शानदार मजीन घोड़े थे जिन पर जहन किए हुए थे। इन के पीछे 2 सवार थे, एक के हाथ में एक फेर और जिस पर अरबी इबारत मरकूम थी और दूसरे के हाथ में एक नकारा था जिस पर वह आहिस्ता आहिस्ता चू मारता जाता था ताकि ये पता चल सके कि बादशाह की सवारी आ रही है। पैदल फौज लातदाद थी जो बादशाह के दोनों जानब की तारों में आगे बढ़ रही थी। बाज के हाथों में सुरख और बाज के हाथों में सब झंडियां थीं। बाजों के हाथों में बैत थे जिनसे वो इन लोगों को दूर हटाने जाते थे। जो नज़दीक आने की जुरात करते थे वो दोनों जानब हाथों से बैत ले बहुत से सवार थे जो लोगों को दूर रखते थे। पैदल चलने वालों में बहुत से लोगों के पास अता थे और बहुत से लोग सड़क पर पानी डालते जाते थे। इसके साथ ही एक अहदेदार ऐसा भी था जिसके पास ज़मीनों, गांवों और सूबों के नक्शा जात थे। जिनसे बादशाह को गुजरना था, ताकि अगर किसी वक्त बादशाह ये पूछ ले कि वो किस सरजमीन और किसके सूबे से गुजर रहा है तो उसे फौरी जवाब दिया जा सके। उसकी तहवील छोटे से छोटे गांव के मुतलक मुकम्मल तफसील होती है। नेज ये कि किस कता और आरजी से कितना महसूल वसूल होता है। पैदल चलने वालों में से कुछ के पास यहाँ होती हैं और रास्ते की तरह इस तरह पेमाइश करते हैं। वो बादशाह की आमद के बाद शाही खेमे से पेमाइश शुरू कर देते हैं। अगला शख्स जिसके पास रस्सी होती है ज़मीन पर एक निशान लगा देता है और जब पिछला शख्स इस निशान पर पहुंचता है तो वहां से आवाज़ दिखाता है और पहला शख्स एक और निशान लगा कर दो की गिनती गिनता है। पूरे सफ़र वो इसी तरह करते जाते हैं। एक और शख्स के पास फासले का खाता होता है और वो उसमें अंदराज करता जाता है। अगर इत्तेफाक से बादशाह ये पूछ ले कि कितना सफ़र तय हो चुका है तो वो फौरन जवाब देते हैं, इसलिए कि उन्हें ये पता है कि कितनी रस्सियों की नाप से एक कोस बनता है। एक और पैदल शख्स के पास घड़ी का शीशा होता है जिससे वक्त की पैमाइश करता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कांसी की तश्तरी पर हथौड़े की ज़रब से वक्त की मुद्दत का ऐलान करता है। इन सब के पीछे बादशाह नहायत खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करता है। मुगल बादशाह इतनी शान से सफ़र करते हैं और उनसे लोगों को बर्ताव इतना लतीफ़ होता है कि फौजियों के आगे आगे सफ़ेद चादरों के लदा हुआ एक ऊँट चलता है, ताकि अगर कोई आदमी ये जानवर मरा हुआ दिखाई दे तो उसे ढांप दिया जाए। चादर के कोनों को पत्थरों से दिया जाता है ताकि वो हवा से उड़ न सके। बादशाह गुजरते हुए उनकी बात मालूम हासिल कर सकता है। इन सब से थोड़ी दूर पीछे रोशन आरा बेगम एक बहुत बड़े हाथी पर एक पालकी में, जिसे पतंबर कहते हैं, सवार थी। पतंबर एक किस्म का तख्त होता है जिस पर एक छतरी होती है और पूरे तौर से सोने की नक्शो नगार मजीन ये तख्त बहुत खूबसूरत होता है। इनके पीछे उम्दा घोड़ों पर सवार और दूसरे पैर तक मुख्तलिफ रंगों से लबा लबा लबादों में मलबूस उनकी 150 खादमें थीं। उनमें से हर एक के हाथ में एक बैत थी। रोशन आरा बेगम हाथी के आगे चार निशान के हाथी थे। बहुत से बहादुर और तंदुरुस्त खुद आदमी पैदल थे, ताकि वह हर शख्स को ख्वाह और अमीर हो या फकीर डंडे मारकर और धक्के देकर भगा दे। रोशन आरा बेगम के पीछे उनके मुलाजम थे। ये खत फरोख्त वाले ख्वाजा सरा थे, जिनमें कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ पालकी की चादरों तरफ पैदल चल रहे थे। उनके पीछे तीन हाथियों पर मुख्तलिफ किस्म की पालकियां थीं जिन पर सुनहरे जालीदार पर्दे पड़े हुए थे। इन पालकियों में रोशन आरा बेगम की ख्वासें थीं। उनके बाद तकरीबन 60 हाथियों पर पर्देदार पालकियों में दिगर खावतीन थी। रोशन आरा बेगम के मुलाजमे के बाद तीन बेगमाद यानी औरंगजेब की रानियां और हरम सरा की दिगर शहजादियां थीं। हर एक के खास मुलाजमे इनके उनके साथ थे। इस सफर की सारी तफसीलात बयान करना तवूल कलामी होगी, इसलिए कि मुगल ऐसे मामलात बहुत ज्यादा वो नफासत का इजहार करते हैं और ऐसी किसी शय को नज़रअंदाज नहीं करते जो उनकी शान और शौकत में इजाफा करे। ये बताना बाकी रह गया है कि इस लातदाद जमो गफीर से कम अज़ कम एक दिन पहले शामी शाही अमूर खाना का सरबरा दिगर माहरीन की मोयत में ऐसी जगह के इंतखाब के लिए रवाना होता है जहाँ शाही खेमा जात नस्ब किए जा सकें। इस मकसद के लिए हमेशा की दिलफरेब जगह का इंतखाब किया जाता है। पड़ाव पर जगह की तकसीम इस तरह की जाती है कि फौज की आमद से किसी किस्म का इंतशार ना हो। सबसे पहले शाही खेमों के ये जगह मुकर्रर की जाती है। मैंने बाद अज़ां कई बार इस जगह की पैमाइश की है और इसका मुहीत तकरीबन 500 कदम होता है। शाही खेमों के पिछले एक और दरवाज़ा होता है जिसमें खावतीन रहती हैं। यह जगह बहुत मोहतरम तसव्वुर की जाती है। इसके बाद शहजादों और सरदारों और अमराह की खेमों की जगह की मुकर्रर की जाती है। यह तमाम किया जाता है कि इन खेमों और शाही खेमों के दरमियान काफ़ी फासला हो। दरमियानी जगह से चारों तरफ 6 हाथ ऊंचा सुरख कपड़ा घेर दिया जाता है जो दीवार का काम करता है। इस घेरे के चारों तरफ छोटी तोहीन नस्ब की जाती है। इनके आगे खंदक होती है और पीछे मकड़ी की जाली दार भाड़ जो देनस की कदीम कुर्सियों की तरह खिलती है और बंद होती है। दरवाजे के दोनों तरफ 130 कदम पर 2 खेमे होते हैं। दरवाजों के सामने में एक बड़ा खेमा मौसीकार और साजांदों के लिए होता है। बाज मखसूस शाही खेमों में बादशाह दरबार करता है। इन खेमों से सहारे के लिए छोटे छोटे मुनकशिश व मजीन शह तीर इस्तेमाल के लिए जाते हैं, जिन पर सोने की मुठियाँ होती हैं। इन मुठियों को शाही खानदान इनके अफराद के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बहुत बुलंद शह तीर पर एक कंदल रोशन की जाती है, जो देर से आने वालों को रहबरी के लिए होती है। राजाओं और अमीरों के नीचे कंदल तो होते हैं, मगर बादशाह के खामों जितने बुलंद नहीं होते। बसूरत दिगर ऐसे खामों के डा दिए जाते हैं और उनकी अपनी तबाही का खतरा होता है। जब बादशाह सफ़र शुरू करने के लिए अपने खेमे से निकलता है, तो शहजादे, अमरा और सरदार तज़ीम के लिए उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। हर एक कोई मुख्तसर इल्तमास करता है और मुख्तसर जवाब पाता है। बादशाहों के साथ साथ वो इस पड़ाव के आखिर तक चलते हैं, जहां उन्होंने दिन भर कयाम किया था, और फिर हर शख्स अपने अपने शोबे में अपनी मखसूस जगह वापस आ जाता है। इसके बाद बादशाह शिकारियों तक पहुंच जाता है और अपनी मर्जी का इजहार करता है कि आया वो शिकार खेलना चाहता है या नहीं। अगर शिकार की ख्वाहिश हो तो बादशाह फौज का पीछे छोड़ देता है। इसके साथ पैदल आदमी उसका हिफाजती दस्ता होता है, बाकी मंदा तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। अगर वो शिकार खेलना नहीं चाहता तो शिकारी अपने मखसूस जगह पर वापस चले जाते हैं। पेश खेमे के दिखाई देते हैं, मुतरब एक बार फिर अपने साज गाने शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक बजाते रहते हैं जब तक के बादशाह खेमों के दरवाजे से गुजर न जाए। उसके बाद छोटी सी तोपें दागी जाती हैं। शहजादियों और बेगमात बादशाह की आमद पर मंजिल मुबारकबाद कहकर आबाद कर देती हैं। ये बात मुशाहदे में आई है कि गो शहजादियों और बेगमात सबसे आखिर में रवाना होती हैं, मगर मंजिल भर से पहले पहुँचती हैं, इसलिए कि वो कोई मुख्तसर राह करती हैं। बिलआमूम खावतीन साजो सामान की रवानगी के बाद रवाना होती हैं और तेज़ी से सफ़र करती हैं। मुझे ये मालूम है कि इस सफ़र में रोशन आरा बेगम की पालकी में इनकी खादमा नहीं थी, बल्कि उसकी जगह खादम के कपड़ों में मलबूस एक नौजवान था। अल्लाह ही जानता है कि वो पीने पिलाने के अलावा और क्या क्या चाहते थे। जिस शख्स ने मुझे ये बात बताई वो मेरा एक ख्वाजा सरा दोस्त था, जो शराब का बहुत शौकीन था। इस किस्से की तौसीक शहजादी की मौत के बाद उसकी एक और ख्वास ने भी की। अलावा अजी उन बातों से भी बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो मैं बादशाह की दिल्ली में आमद के सिलसिले में पहले कर चुका हूँ। मौका के जिन नज़मों ज़ब्त और लोगों के इजतमा के बायस शाही पड़ाव के बारे में और तफसील देना वक्त तलब भी है और तवूल कलाम भी। सफ़र में मुग़ल बादशाह की मिसाल सामने रख कर ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुग़लों की मुमकलत में क्या होता होगा। बिलखसूस इस उम्र की पेश नज़र को मुग़ल बादशाह नाकाबिल बयान शान शौकत का मुजाहरा करते हैं। यहाँ मैं बस ये कह सकता हूँ कि गोया एक अजीम शहर एक मुकाम से दूसरे मुकाम की जानब सफ़र कर रहा है। यहाँ ना बाज़ारों की कमी होती है, ना दुकानों की, ना खेल व तफरी की, ना सोने चांदी की। मुख्तसर ये कि जो कुछ भी किसी अच्छे शहरों में मिल सकता है वो पड़ाव पर भी मुहैया होता है। अपने जज्बा जस्तू की तस्कीन की खातर मैं सिर्फ 3 दिन ही लश्कर के साथ चला रहा। ये सोच कर के बगैर मुलाजमत के कश्मीर तक जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं, मैंने वापसी का फैसला किया और उसके बजाय बंगाली जाना तय किया, जो एक कारोबारी मुल्क है जहां एशिया की ज़रूरत सस्ती है और जहां बहुत से यूरोपी बशंदे की रहाइश भी। इसलिए बादशाह के पूरे सफ़र कश्मीर का जिक्र नहीं करता। अगर किसी मुनासिब मौका पर मैं कश्मीर के बारे में बातों का तज़करा करूँगा जिनका मुझे इल्म है।